एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फिल्म जगत से जुड़े हुए किसी एक गीत के बारे में चर्चा करने के लिए, उससे जुड़ी हुई कहानियां बताने के लिए हम आते हैं अपने साप्ताहिक स्तंभ एक गीत सौ अफसाने लेकर। आज की कड़ी में हम जिस गीत के बनने की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है 1942 की फिल्म रोटी का गीत उलझ गए नैनवा, जिसे गाया है अख्तरी बाई फैजबादी यानी कि बेगम अख्तर ने। 30 के दशक में फिल्मों में आने और कुछ ही समय में वहां से संन्यास लेने के बावजूद अख्तरी बाई फैजाबादी उर्फ बेगम अख्तर ने फिर एक बार 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी में गाने का फैसला क्यों किया? और महबूब खान ने भी किसी फिल्मी गायिका से फिल्म के गीत गवाने के बजाय बेगम अख्तर से गीत गवाने का फैसला क्यों किया? संगीतकार अनिल विश्वास ने उनकी गायकी के साथ कैसा प्रयोग किया और उसका फिल्मी गजलों के स्वरूप पर कैसा प्रभाव पड़ा, ये सब बातें आज के इस अंक में। आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और प्रस्तुति है अनुज श्रीवास्तव की।
बेगम अख्तर उपशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक चमकता सितारा हैं, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत और गजलों में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें उर्दू और हिंदी थिएटर में बतौर अभिनेत्री एक लगाव सा रहा, जो फिल्म निर्माण के शुरू होने पर फिल्मों की तरफ बढ़ गया। थिएटर और फिल्मों में उनका पदार्पण उतना ही अचानक था जितना कि बतौर शास्त्रीय गायिका उनकी पहली पब्लिक प्रस्तुति, जो 1925 में कलकत्ता में आयोजित बिहार फ्लड रिलीफ कॉन्सर्ट में थी। इसमें उन्हें तब अचानक मौका मिल गया जब सभी बड़े कलाकारों ने ऐन मौके पर गाने से इनकार कर दिया था। दर्शकों और श्रोताओं को शांत कराने के लिए आयोजकों ने अख्तरी बाई फैजाबादी को स्टेज पर भेजा। जब उन्होंने तूने बुते हर जाई कुछ ऐसी अदा पाई ये गजल पेश की, तो वहां मौजूद दर्शकों ने उनसे और गजलें, दादरा, ठुमरियां सुनाने की मांग की। 2 घंटे तक अख्तरी बाई प्रोग्राम करती रहीं और लोगों को समझ में आ गया कि एक नए सितारे का अभी अभी जन्म हुआ है। उस ऑडियंस में मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और कोरियंथियन थिएटर के मालिक भी मौजूद थे। अच्छी गायिका के साथ साथ अख्तरी बाई देखने में भी सुंदर थीं। बस कोरियंथियन थिएटर में उन्हें सिंगिंग स्टार का रोल मिल गया। दर्जनों नाटकों में उन्होंने वहां अभिनय किया और गीत गाए। रोचक तथ्य यह है कि लैला मजनू नाटक में उन्होंने मजनू का रोल निभाया था, क्योंकि उस किरदार को 16 गीत गाने थे। फिल्मों का दौर शुरू होते ही अख्तरी बाई फिल्मों में आ गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सिंगिंग स्टार दाखिल हुईं। वहां उनके अभिनय और गायन से सजी पहली फिल्म प्रदर्शित हुई एक दिन का बादशाह, जो 1933 में बनी थी। 1933 में ही नल दमयंती फिल्म आई। 1934 में मुमताज बेगम, रूप कुमारी और अमीना फिल्म आई। 1935 में फिल्म आई जवानी का नशा और नसीब का चक्कर, ये फिल्म आई 1936 में। फिल्मों में अत्यधिक व्यस्तता होने की वजह से संगीत के प्रति वो एक तरह से अन्याय कर रही थीं, इसलिए 1937 और 38 में वो फिल्मों से संन्यास लेकर लखनऊ चली गईं और गायन में पूरा ध्यान लगा दिया। एक छोटे से अरसे के लिए वो रामपुर के नवाब के दरबार में गायिका भी रहीं। उनकी फिल्मों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1941 में अख्तरी बाई पूना गईं एक स्टेज शो के लिए। शो में निर्माता निर्देशक महबूब खान और संगीतकार अनिल विश्वास भी ऑडियंस में बैठे उनका गायन सुन रहे थे। दरअसल वो वहां अख्तरी बाई को अपनी अगली फिल्म रोटी में गवाने के लिए राजी करने को आए थे। बात कुछ यूं हुई कि जब महबूब साहब ने अनिल दा को आकर कहा कि रोटी के गीत सरदार अख्तर गाएंगी, तब अनिल दा ने साफ साफ कह दिया कि फिर गाने भी वैसे ही बनेंगे। महबूब साहब चिढ़कर बोले कि क्या तुझे अख्तरी बाई फैजाबादी चाहिए? अनिल दा का सीधा और साफ जवाब था कि मंगवा दें। इस तरह दोनों पहुंच गए पूना। उन दिनों रामपुर के नवाब उनसे निकाह करना चाहते थे। पर अख्तरी बाई को शादी के बंधनों में नहीं बंधना था, इसलिए महबूब खान के रोटी के प्रस्ताव को पाकर उन्होंने बंबई आने का फैसला लिया। 1942 में प्रदर्शित रोटी अख्तरी बाई की बतौर अभिनेत्री अंतिम फिल्म साबित हुई। संगीतकार तुषार भाटिया के साथ बातचीत में संगीतकार अनिल बिस्वास ने इस फिल्म के गीतों से जुड़े महत्वपूर्ण किस्से बताए। अनिल दा ने अख्तरी बाई से विविध प्रकार की रचनाएं गवाने की कोशिश की, गजलें, ठुमरी, दादरा और हल्के फुल्के गीत भी। अनिल दा बताते हैं कि ख्याल की कोई गुंजाइश नहीं थी, वरना उनसे वो ये भी गवाते। अनिल दा ने पहले गाना शुरू किया उलझ गए नयनवा, और गीतकार आरजू लखनवी साहब कहने लगे कि देख एक तिहाई बना के लाया हूं, उलझ गए नयनवा। ये एक दादरा का रूप है। मुखड़े के बाद अंतरे में जो शेर आते हैं वो अनिल दा को बहुत पसंद आए। उस साक्षात्कार में अनिल ने उनमें से एक शेर पढ़कर सुनाया। शेर सुनाने से पहले उन्होंने कहा कि इस तरह के शेर को उलटवासी कहते हैं। अखियन रस की बूंद जरा सी जलती आग बुझाए, जलती आग बुझाए बालम बुझी आग दहकाए, उलझ गए नयन वा छूटे नहीं छुटाए। फिल्म का ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। वैसे इस फिल्म में अख्तरी बाई की गाई 6 रचनाएं थीं, पर फिल्म में केवल 3 को जगह मिली। अन्य रचनाओं में शामिल थीं सफदर आह के लिखे फिर फसले बहार आई दिले दीवाना, चार दिनों की जवानी मतवाले पीले पीले, और ए प्रेम तेरी बलिहारी हो हम नया करीना सीख गए। आरजू लखनवी का लिखा वो हंस रहे हैं आह किए जा रहा हूं मैं, और बेहजाद लखनवी का रहने लगा है दिल में अंधेरा तेरे बगैर, हाय बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। अनिल बिस्वास ने इन गजलों को हल्के फुल्के अंदाज में फिल्मी गीतों की शक्ल में प्रस्तुत करके जनसाधारण में इतना लोकप्रिय बनाया कि इसे फिल्म संगीत के इतिहास की एक प्रमुख उपलब्धि माना गया। उनके इस नवीन प्रयोग की खूब सराहना हुई और इसके बाद फिल्मी गीतों में गजलों का चलन भी तेजी से बढ़ा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले फिल्मों में गजलें नहीं आईं, पर वो गजलों की पारंपरिक शैली में होती थीं, न कि फिल्मी गीतों के अंदाज में। इस महारत को हासिल करने के लिए अनिल बिस्वास ने 6 वर्षों तक गजलों का अध्ययन भी किया था। आगे भी गजल, ठुमरी और रागमाला का प्रयोग उनकी खासियत बनी रही। फिल्म रोटी में अख्तरी बाई के साथ चंद्रमोहन, शेख मुख्तार, अशरफ खान और सितारा देवी ने मुख्य किरदारों में अभिनय किया। अफसोस की बात ये हुई कि जब ये फिल्म रिलीज होने ही वाली थी तब मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी ने अख्तरी बाई के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, क्योंकि उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था जिसका उल्लंघन हुआ था। अदालत ने फिल्म पर रोक लगा दी और फिल्म तभी जारी हो पाई जब उनके गाए गीतों को फिल्म से हटा दिया गया। बाद में मेगाफोन ने ही इन 6 गीतों का 78 RPM रिकॉर्ड जारी किया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस अंक का आलेख तैयार किया है सुजॉय चैटर्जी ने। इस स्तंभ के संचालक संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।